भाव दीपिका लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो सौवसाहुम् स्वभाव विभाव परभावको सम्यक् ज्ञाताकाधारकता सुपुनि नमो चित्तधरिणा। पंडित श्री दीपचंद जी का आशीर्वाद लिखित यह भाव दीपिका नामक ग्रंथ है। इसमें जीव के 5 असाधारण भावों की विस्तार से चर्चा है। अभी हम औदयिक भावों में मिथ्या तो औदयिक भाव की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने 2 प्रकार के देखे, गृहित मिथ्यात्व और अगृहित मिथ्यात्व। गृहित मिथ्यात्व में भी हमने 5 प्रकार देखे, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। अब उसके बाद ये जो मिथ्यात्व जो कर्म है, यानी उसके कर्म के उदय के निमित्त से वैसे है तो जीव का अपराध, और वहां मिथ्यात्व नाम का जो दर्शन मुनि कर्म है उसका उदय पाया जाता है। कर्म में जो फल देने की शक्ति है उसको अनुभाग कहते हैं, और उसको नापने का जो यूनिट है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये अविभाग प्रतिच्छेदों को बताने वाले परमाणु को वर्ग कहेंगे। समान समान अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें है ऐसे परमाणुओं के समूह को, वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा एक अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा है, तीसरी उससे एक, ऐसे अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। ऐसे स्पर्धक भी अनंत पाए जाते हैं। तो उसमें अनुभाग की अपेक्षा स्थूल रूप से 4 भेद करके बताए। सबसे तीव्र अनुभाग वाले का नाम मालूम है? मालूम, शैल रूप। फिर उसके बाद थोड़ा कम उससे अनंत विभाग प्रमाण अस्थि रूप, फिर दारू रूप। मिथ्यात्व के तो ये 3 है, परंतु वो सम्यक मिथ्यात्व भी दारू रूप होता है, और सम्यक प्रकृति है वो दारू रूप और शैल रूप हो जाता। लता रूप कहना। तो ये 4 प्रकार हमने देखे थे। ढूंढारी में 40 पृष्ठ पर है और हिन्दी में 44 पृष्ठ पर आए हैं। जो नया पैराग्राफ नीचे सेकंड उसके शुरू करते हैं। तहां सर्वतो शैल रूप और सर्व अस्थि रूप और दारू रूप स्पर्धकनी का अनंत भागनी विषय, एक भाग बिना बहुभाग तो मिथ्यात्व रूप है। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व यानी दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व तो प्रकृति के स्पर्धक कौन कौन से हैं? तो सभी शैल रूप, जितने अनंत है वो सभी वो मिथ्यात्व के हैं। अस्थि वाले भी सभी मिथ्यात्व के हैं। दारू रूप जो अनंत स्पर्धक है उसमें अनंत वा एक भाग छोड़ दो तो बहुभाग प्रमाण तो मिथ्यात्व के स्पर्धक। यही फिर पढ़ेंगे अभी हम। तहां सर्वतो शैल रूप और सर्व अस्थि रूप और दारू रूप स्पर्धकनी का अनंत भागनी विषय, यानी अनंत भागों में से एक भाग बिना बहुभाग तो मिथ्यात्व रूप है। अभी इसका अर्थ समझ में आया नहीं? सर वाक्य का मिथ्यात्व रूप है, यानी क्या? मिथ्यात्व भाव उपजाने को कारण है। कैसा कारण है? निमित्त कारण है। और निमित्त कार्य में क्या करता है? कुछ नहीं करता। तो ये कर्म का उदय है, बस इतना बताना है। कर्मों का उदय वहां पाया जाता है, ये बात यहां बतानी थी। और यहां निमित्त की भाषा में करना नियोग में कथन होगा, समझना अपनी जिम्मेदारी। बार बार ये नहीं कहेंगे, वहां कारण रूप कह देंगे। बहुरी, दारू भाग का एक भाग का अनंत भाग कीजिए। पहले हमने अनंत बहुभाग अलग निकाला था, एक भाग अलग निकाला, अब इस एक भाग में भी अनंत भाग और अनंत बहुभाग अलग करना। बहुभाग समझते हैं? जैसे दस है तो दस में से एक को अलग निकालो तो नौ क्या हो जाएंगे? बहुभाग। ऐसे अनंत में से अनंत भाग अलग निकालो तो बाकी जो अनंत है रिमेनिंग उसको बहुभाग कहेंगे। तो एक भाग में से फिर बहुभाग निकाला वो सम्यक मिथ्यात्व रूप है। सो मिश्र भाव उपजावने का कारण, इसको मिश्र प्रकृति भी कहते हैं। कैसा मिश्र? न सम्यक तो है न मिथ्यात्व है, ऐसा जुदे ही जाति का ये परिणाम है। यानी सम्यक्त्व से तो भ्रष्ट हुआ है वो, और ये बिगड़ा हुआ ऐसा कुछ उसका परिणाम है, इसको मिश्र भाव कहते हैं। कहा सम्यक
खाली दारू का बहुभाग ही है?
बहुभाग नहीं, एक भाग, एक भाग का बहुभाग,
एक भाग का बहुभाग।
बहुभाग का मिथ्यात्व रूप, एक भाग जो अलग निकाला था वो एक का फिर बहुभाग, बस इतना ही है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व में बस दारू का एक भाग का बहुभाग इतना ही है उसका। ये जो सर्वघाती की जो लोअर लिमिट है वो लेना इसमें।
यानी जो अनंत भाग था, एक अनंत अनंत भाग छोड़कर उसमें अनंत भाग का अनंत अनंत भाग बहुभाग वो मिश्र मिल जाए और बचा हुआ एक भाग भगवत लता।
हमने देखे थे कि शैल वाले बहुत ज्यादा है, फिर अस्थि वाले उससे कम है, दारू वाले उससे कम है। अभी ये जो दारू वाला जो है उसमें अनंत वा भाग अलग निकालो, वो तो कैसा है? देशघाती वाला है, यानी माइल्ड वाला है। अब यहाँ से सर्वघाती की लिमिट चालू होती है, यानी इसी में सम्यक मिथ्यात्व भी है और मिथ्यात्व भी है। तो ये सारा मिथ्यात्व का है, ये भी मिथ्यात्व का है, और इसमें यहाँ तक मिथ्यात्व है। ये जो इतना ही खाली सम्यक मिथ्यात्व है, अनंत बहुभाग का पहले एक भाग अलग निकाला, उस एक भाग का फिर बहुभाग सम्यक मिथ्यात्व। अब नीचे का जो एक भाग का अनंत वा भाग और नीचे दारू का अभी यहां लता रूप, ये सारे है सम्यक प्रकृति रूप से। तीन प्रकृति हो गई ना, बनते समय एक मिथ्यात्व का ही बंद हुआ था और अन्य दो प्रकृति उसका अनुभाग घटकर तैयार हुई है।
ये जब आपने पढ़ा था सारी विषय में सब छोड़ दिया था, देखो अभी कुछ ख्याल नहीं आता।
अभी तो सब ख्याल नहीं। तहां सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों लार ही मिली, एक मिश्र भाव हुए। लार ही मिले ने साथ मिलकर ऐसा मिक्स, ऐसा कोई मिश्र जाति का जुदा परिणाम है। बहुरी, दारू को एक भाग यानी दारू रूप जो स्पर्धक है उसका एक भाग। ये दारू यानी वो मध्य वाला दारू नहीं समझना, दारू यानी सूखी लकड़ी को दारू कहते हैं। और लता भाग का, क्योंकि ये नाम क्यों दिए थे? कठिनाई की अपेक्षा। जैसे यहाँ शैल यानी पाषाण बहुत कड़क कठिन है, कठोर है, उससे अस्थि यानी हड्डी वो थोड़ी नरम है, उससे दारू यानी वो काष्ठ वो और नरम है, और उससे बेल एकदम नरम है। ऐसे इनके नाम, यानी नाम देके थोड़ा उनको उसका डिफरेंस करने की यहाँ कोशिश की है। अत्यंत तीव्र अनुभाग वाले वो शैल वाले, इस तरह से उसमें भी बहुत अनंत स्पर्धक है तो उसमें भी इतनी वेरिएशन है। तो दारू का एक भाग और लता भाग का सर्वस्पर्धक, लता भाग में भी अनंत स्पर्धक हो गए वो सभी, ये किसके हैं? तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व भाव रूप है, यानी मिथ्यात्व में से ये जो सम्यक प्रकृति बनेगी उसको सम्यक तो मोहनीय कहेंगे, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कहेंगे, उस भाव रूप है। ते देशघाती है, देखो ये दो शब्द आ रहे हैं, सर्वघाती और देशघाती। किसका घात करते हैं?
गुणों का घात नहीं करते लेकिन त्वरया प्रकट नहीं होने।
पर कौन से गुणों का लेना अभी हम अभी यहाँ तो दर्शन मुनि की बात है। हाँ देखो कहीं पर भी घाती कर्म की बात होती है किसका घात करते है? अपने प्रतिपक्ष का घात करते। तो ज्ञानावरण में उसका प्रतिपक्ष कौन है? ज्ञान गुण। दर्शनावरण में दर्शन गुण की जो कोई पर्याय है। अब यहाँ पर भी मोहनीय कर्म किसका घात करेंगे? तो दर्शन मोहनी हो तो श्रद्धा ने सम्यक तो का सम्यक दर्शन का घात होगा और चारित्र मोहनी में चारित्र का घात है ना कषाय उत्पन्न। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि उसमें भी सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती का अर्थ है सम्यक्त्व का पूरा घात, यानी मिथ्यात्व है यानी सम्यक्त्व नहीं बिल्कुल नहीं हो रहे। सम्यक मिथ्यात्व भी कैसी है? सर्वघाती है। सम्यक यानी वो मिश्र वाला है थोड़ा सम्यक्त्व ऐसा नहीं है, सम्यक्त्व का घात ही है वहां। और सम्यक प्रकृति को क्या कहा? देशघाती, यानी उसका उदय भी चलता रहे और सम्यक्त्व भी बना रहे, जिसको हम क्षोभ सम्यक्त्व या वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। तो इसलिए उसको कहा वो देशघाती है। ते जीव को सम्यक्त्व भाव मूल सो तो न घात सके, यानी सम्यक प्रकृति का उदय होने पर वो सम्यक्त्व का मूल से घात नहीं करते। तो क्या होता है उससे? है तो मिथ्यात्व में से तैयार हुई प्रकृति और देश घाती है तो उसका कुछ तो फल होगा। तो कहते हैं तिस विषय ने सम्यक्त्व में चलमल अगाढ़ादि दोष उपजाओ करे, यानी चल चल दोष मल दोष और अगाढ़ दोष, यानी वैसे तो वो सूक्ष्म दोष होते हैं। चल यानी चलायमान होना, अस्थिरता होना थोड़ी। मल यानी जो हमने देखे थे आठ मल जो होते हैं वैसे उसमें से किंचित थोड़ा दोष लग सकता है। अगाढ़ यानी इतना गाढ़ा सम्यक्त्व नहीं जैसे क्षायिक सम्यक्त्व का है वैसा। इसको उदाहरण कैसे देते हैं? जैसे कोई वृद्ध है चल तो रहा है परंतु कैसे थोड़ा थोड़ा ऐसा अस्थिर है या लड़खड़ाता है इस तरह से। ये तो उदाहरण बहुत स्थूल है परंतु ये चलमलन अगाढ़ दोष वहां पाए जाते हैं। इसलिए ये जो सम्यक्त्व है कौन सा? क्षोभम सम्यक्त्व, सम्यक प्रकृति के उदय वाला, वो इसके साथ श्रेणी नहीं चढ़ सकता। यानी आठवा नौवा दसवा गुण स्थान जो है भले उपशम श्रेणी वाली हो क्षपक श्रेणी वाली हो ये वेदक सम्यक्त्व के साथ वो श्रेणी नहीं चढ़ता। या तो वो फिर उपशम द्वितीय उपशम करेगा या क्षायिक सम्यक्त्व करेगा। ऐसे मिथ्यात्व तीन प्रकार है। मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनीय तीन प्रकार का है। मिथ्यात्व तीन प्रकार क्यों कहा? एक तो मिथ्यात्व नाम दिया, यहाँ इन्होंने नाम क्या दिया? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व के तीन भेद हैं। जिन जीवनी के शैल रूप अस्थि रूप और दारू भाग के अनंत भाग विषय एक भाग के बिना बहुभाग मिथ्यात्व रूप है, तीन के अनंत भाग विषय एक भाग बिना बहुभाग स्पर्धनी का उदय हो ते जीव तो धर्म कुधर्म विषय समझे ही नहीं। अब क्या कहते हैं? मिथ्यात्व क्या क्या है? शैल वाले है, अस्थि वाले है और दारू भाग का जो अनंत बहुभाग है। तो इतने सारे जो है वो तो मिथ्यात्व के है। यहाँ वो सूक्ष्म मिथ्यात्व का भी उदय रहेगा तो भी जीव को समय को नहीं होगा। यहाँ दूसरी बात समझा रहे हैं। तो ये जो अनंत भागों में से एक भाग बिना यानी नीचे के थोड़े से है तो सर्वघाती पर नीचे मिथ्यात्व के ही नीचे के कुछ स्पर्धक छोड़ दो तो ये जो सारे जो अनंत स्पर्धक है इनका उदय अगर हो रहा है जीव के वो क्या सूचित करता है? यहाँ जीव का तीव्र मिथ्यात्व चल रहा है तो उस समय क्या होगा? जीव तो धर्म कुधर्म विषय समझे ही नहीं, यानी धर्म और कुधर्म के बारे में उसको कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं लगता है क्योंकि उसका ऐसा ही मिथ्यात्व का उदय है। धर्म कहिए सम्यक धर्म और कुधर्म कहिए मिथ्या धर्म। धर्म किसको कहना? सम्यक धर्म को यहाँ धर्म कहा है और जो मिथ्या धर्म है उसको यहाँ कुधर्म कहा। तिनके समझने योग्य ही नहीं ऐसे एकेन्द्रिय बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौइंद्रिय असंगी पंचेन्द्रिय अनंत है जीव, किंचित उन संसार राशि प्रमाण, जरा इसको हम समझ लेते पहले। समय दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कौन से जीव में, कितने इंद्रिय वालों के है, पंचेंद्रिय वो भी संगी होना चाहिए, मन सहित होना चाहिए, क्योंकि मन के द्वारा उसका निर्णय करने का, तत्वों का निर्णय, तत्वों को तो सुनने का तो कर्ण इंद्रिय से इस वाला सुन सकता है, परंतु वो समझना भी चाहिए, उसका अर्थ ग्रहण होना चाहिए, वो याद रहना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, योग्य अयोग्य का निर्णय करना चाहिए, ये मन वाला कर सकता है। इसलिए संगी पंचेंद्रियों के ही सम्यक्त्व की पात्रता है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रियों में तो उसकी योग्यता ही नहीं है। तो कहते हैं इनमें ऐसे कितने जीव है, अनंत जीव, क्योंकि अनंत जीव राशि तो एक इंद्रिय में ही होती है, बाकी तो सारे असंख्यात असंख्यात होते, पर इनकी सबकी टोटल मिलकर कितने हैं, अनंत है। और ये अनंत कितने हैं, तो पूरे संसार राशि में से कुछ कम है, इसलिए कहते किंचित उन संसारी राशि प्रमाण। सिद्ध राशि भी अनंत और उससे अनंत गुणे संसारी राशि, तो संसारी राशि कितनी कितनी पर्याय में है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय मिलकर सारी संसारी राशि है। उसमें पंचेंद्रिय को अलग निकाला, संगी पंचेंद्रिय को, असंगी को रखा, तो ये सब मिलकर कितने हुए, संसारी राशि में से कुछ अलग निकाले ना, थोड़े असंख्यात जीव असंख्यात अलग निकाले, बाकी अनंत राशि इसमें है। इसलिए कहते किंचित ऊन यानी किंचित कम संसारी राशि प्रमाण, ये कौन है, समझने योग्य ही नहीं, यानी जिसके ऐसी समझ ही नहीं, इतने ज्ञान की पात्रता योग्यता ही नहीं, ये इतने अनंत जीव। और समझने योग्य कौन है, संगी पंचेंद्रिय कितने है, असंख्यात जीव है, समझने की योग्यता है, संगी पंचेंद्रियों में समझने की योग्यता है। अब उसमें तीन विषय, असंख्यात भाग विषय एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण, ते समझने विषय बुद्धि न धर सके, क्या कहना चाहते हैं। संगी पंचेंद्रिय कौन कौन है, देव है, नारकी है, मनुष्य है, दिव्यांश है, अभी वो संगी पंचेंद्रिय होकर भी लब्धि अपर्याप्त हो गए तो कुछ काम के नहीं है। बाकी भी जीवों में सभी में मिलकर असंख्यात जीवों में से एक भाग प्रमाण अलग निकालो तो बाकी क्या है, समझने में बुद्धि ही नहीं धर सकते, समझने में उनकी बुद्धि नहीं लगती है, कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कहा। बहुभाग प्रमाण जीवों की उसमें बुद्धि नहीं काम करती है, बाकी दुनियादारी में बहुत बुद्धि लगाएंगे, यानी उनमें बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं कहा। इसको समझने में, धर्म अधर्म के बारे में तत्व को समझने में उनकी बुद्धि नहीं लगती। अपने अपने विषय कषायादु सांसारिक कार्य तीन विषय संतुष्ट रहे, तो उसमें तो बहुत स्याने हैं और उसी में समाधानी रहते हैं। किसमें, विषय कषायादि रूप, यानी पंचेंद्रियों के विषय और ये जो क्रोध मान माया लोग इन कषाय इन्हीं में संतुष्ट होकर रहते हैं,
उसको सांसारिक कार्य का,
हाँ उसी को सांसारिक कार्य का। धर्म की कथनी ही अप्रिय लागे, क्या कहते हैं, ये बहुत चिढ़ आती उसको, कोई धर्म की बात करते हैं, ये आत्मा फात्मा की बातें हमारे सामने में, विषय कषाय की बातें करेंगे तो बहुत प्रेम से करेंगे, अरे अपने खर्चे से उसको वो हाँ लेके जाएंगे, कहीं टूर पे ले जाएंगे, स्वयं खर्चा करके सिनेमा को लेके जाएंगे, तो धर्म की कैथिनी ही अप्रिय लागे। हम हमेशा तो उदाहरण देते ना, उबलते हुए तेल में पानी डाले तो क्या होता है, भाई कभी देखा है क्या, देखा है प्रयोग करके देखा है तो आग लगने की संभावना होती है, ये थाड़ एकदम बाहर फेंका जाता है पानी, आवाज आती है, और उसी में वो पकोड़े डालेंगे तो आराम से तल के ऊपर आते। ऐसा ही है, जो विषय कषाय में रुचि वाले जीव है उनको धर्म की बात कोई सुनाने को भी जावे तो एकदम आग बबूला हो जाते, इतना नहीं वो सुनाने वालों को विघ्न करेंगे और उसका कोई स्वाध्याय वो चौपट कर देंगे, तो कहते और उसके साथ विषय कषाय की बातें करें तो बहुत प्रेम से करेंगे, तो उनको धर्म की कथनी ही अप्रिय लागे, परलोक की बात ही ना करें, अरे वो तो कहते परलोक कुछ है ही नहीं, आजकल तो ये तो जितना अभी आगे चल रहे हैं तो ये सब ढकोसला लगता है उनका, ये कुछ होता ही नहीं है, पुनर्जन्म होता ही नहीं, परलोक होता ही नहीं कुछ। निंद अमनोज्ञ पर्याय पाता विषय ही निमग्न रहे। पर्याय पाता क्यों लिखा उसमें, हिंदी में क्या लिखा?
पर्याय
पाकर
उसी में,
यानी निंद निंद अमनोज्ञ पर्याय में ही वो निमग्न रहते हैं। निंद यानी निंदनीय, जो अच्छी नहीं है, बुरी बुरी पर्याय। कौन सी बुरी पर्याय? अभी ये सब एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय सब ले लेना, विषय कषायादि में वो सब निंदनीय है सब। इन किंचित उन सर्व संसारी अनंतानंत जीव के तो अग्रहित मिथ्या तो भाव ही है। आगे क्या लिखा? ये तो उपदेश योग्य ही नाही। संगी पंचेंद्रियों में भी बहुभाग प्रमाण, जिनके यहाँ मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, विषय कषाय अच्छे लगते हैं, धर्म की रुचि नहीं है, उसकी कथनी अप्रिय लगती है, तो कहते वे उपदेश देने के योग्य नहीं है। हम क्या करते हैं? जो मिले उसको उपदेश सुनाना चाहते हैं, ये उपदेश भी पात्र देखकर उसको देना चाहिए, कहते हैं। अत्यंत तीव्र मिथ्यात्व दृष्टि जीवों को उपदेश देना योग्य नहीं है। हाँ, जो सुनना चाहता है उसको अवश्य देना चाहिए। हाँ,
इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये जो कह रहे हैं ना, ये तो उपदेश योग्य ही नहीं, मैं आप सब लोगों की राय पूछना चाहता हूँ। हम एक जगह यहाँ के बात बहुत अमीर लोग आते थे सुनने को, तो एक भाई साहब आए, बोले क्या तुम बोल रहे तो हमको कुछ समझ नहीं आया, ये पुजगल पुजगल क्या बोलते थे कभी हमने जिंदगी में सुना नहीं है, पुजगल क्या द्रव्य क्या है, आप हमको थोड़े में पूरा मूल उसकी बात समझा। तो भाई इतना क्यों आप समझना चाहते हैं, हम तो मिनिमम मोस्ट बातें आपको बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्या होता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं मित्र लोग, तो सब लोग अपने अपनी हालता है, ये हिंदू हो तो अपनी बात करेंगे, क्रिश्चियन हो तो अपनी बात करेंगे, मैं जैन हूँ मेरे को कुछ बोलने को ही नहीं आता, तो मुझे आप अपनी बात समझाना। मैं बोला ठीक है साहब, समझाएंगे, अभी तो अपना यहाँ प्राय कार्यक्रम चल रहा है, ये बात नहीं देखे। लेकिन ये आप कब मिलते हैं सब लोग, आपस में बातें चलते हैं, मैं हर रात को मिलता हूँ, क्यों कब काय के लिए? जब हम दारू पीते हैं वो टाइम में हम साथ में मिलते हैं, तो उसको सिखाना क्या नहीं
सिखा,
ये दिखाओ, ये तो उपदेश योग्य ही ना है।
नहीं, वो तो उनका नंबर और आगे आएगा। यहाँ बहुत सारे भेद बताए
हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग हैं और ऐसे भी हैं कि जिनको जरा कुछ बता नहीं देखो, तो आपके उसे बाद में बताना, अभी आपने जो टॉपिक चल रहा है। कई जहाँ तो जाते हैं तो शादी में गए, आपका घंटे का प्रवचन रखेंगे, ऐसा पागल हो गया क्या? शादी में तो विषय कचाई की बात चलती है और यहाँ तुम वितरा की बात करो तो कौन सुने तुम्हारा? ऐसी बहुत जगह ऐसी बातें होती हैं। आगे चलो।
हाँ देखो, अभी तो हमने जो देखा एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीनिय चौन्द्रिय असंगी पंचेन्द्रिय जो अनंत जीव है, उनमें तो कोई सुनने की तो पात्रता नहीं, यानी समझने की भी पात्रता नहीं, वो तो ठीक है, वो उपदेश के योग्य तो है ही नहीं। अभी जो संगी पंचेन्द्रिय जीव है उनमें असंख्यात बहुभाग, उनके तो धर्म की रुचि ही नहीं है, अप्रिय लगती है, उनको भी सुनाने योग्य, वो भी उपदेश के योग्य नहीं। अब आगे चलकर बात करें, अवशेष रहे संगी पंचेन्द्रिय जीवनी विषय असंख्याते भाग, संगी पंचेन्द्रिय जीव असंख्यात प्रमाण, उनका भी प्रमाण असंख्यात है, असंख्यात वा भाग लिखा है ना, क्या लिखा है?
असंख्यात।
हाँ, तीन को यथायोग्य असंख्यात का भाग दीजिए, यानी उसका भी असंख्यात वा भाग जो प्रमाण आवे, सो एक भाग जुदा राखी बहुभाग प्रमाण असंख्यात संगी पंचेन्द्रिय जीवने के दारू भाग के अनंत भाग विषय बहुभाग बिना एक भाग प्रमाण अनंत स्पर्धक। कितना कितना क्या क्या लिखा है, तिनके अनंत में बताऊंगी आपको, तिनके अनंत को भाग दीजिए जो प्रमाण आवे, तिस एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण स्पर्धनी का उदय है। अभी हम जिसको देखेंगे, पहले में पहले हमने देखा था ऊपर के तो बहुत सारे जो है वो तो सुनने की उनकी रुचि नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, सभी शैल वाले कैंसिल कर दे, अस्थि वाले और हाँ वो तो गए, अस्थि वाले भी गए। अब हम दारू को जरा यहाँ हाईलाइट करेंगे इसको, ये मिथ्या तो किस स्पर्धक है, तो ये संगी पंचेन्द्रिय में असंख्यात बहुभाग तो हमने धर्म की अरुचि वाले उसको तो निकाल दिया, अब जो एक भाग रहा था उसमें भी असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग किए, दो भाग किए, तो उनका कैसा है स्पर्धक, तो दारू भाग के अनंत भाग में बहुभाग बिना एक भाग प्रमाण अनंत स्पर्धक। बहुभाग में ये बहुभाग और ये एक भाग, तिनके अनंत को भाग दीजिए जो प्रमाण आवे, तिस एक भाग बिना बहुभाग प्रमाण स्पर्धकनी का उदय है। इसके बहुभाग प्रमाण यानी वो शैल अर्सी वाले तो निकाल ही दिए, इसमें भी बहुभाग निकाल दिया, एक भाग का फिर वो भाग करके उसमें ले लिया।
जरा अंश दृष्टि में लेना समझ में,
फिर से पहले में पहले हम देखो हिंदी जरा देना मेरे को, तो मैं आपको समझाऊंगी फिर से। देखो अवशेष रहे संगी पंचेंद्रिय जीवों में असंख्यात वे भाग, संगी पंचेंद्रिय जीव असंख्यात प्रमाण है, यानी असंख्यात वा भाग का भी वैल्यू कितनी है, तो असंख्यात जीव है उसमें, उसमें यथायोग्य का असंख्यात का भाग देना, यानी हजार हो गए तो उसको दस का भाग देना या सौ का भाग देना, यानी यथायोग्य छोटे असंख्यात का भाग देना, उसमें एक भाग रखकर बहुभाग प्रमाण असंख्यात, उसका भी प्रमाण असंख्यात, एक भाग का भी प्रमाण असंख्यात, पर वो बड़ा असंख्यात है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दारू भाग के अनंत वे भाग में बहुभाग बिना एक भाग प्रमाण अनंत स्पर्धक है, यानी दारू के अनंतवा भाग लिया उसमें, दारू का बहुभाग है ये मिथ्यात्व के है और एक भाग सम्यक मिथ्यात्व है, उसको तो छोड़ा परंतु इन अनंत में भी एक भाग को अलग निकाला है और इस एक भाग में भी अनंत स्पर्धक है और उसमें से भी एक अनंतवा भाग लिया स्पर्धकों का। हाँ बहुभाग तो छोड़ दिए, एक का भी अनंत ऊपर का अधिक वाला भाग लिया, उसमें अनंत का भाग दीजिए जो प्रमाण आवे, उसमें से एक भाग को छोड़कर बहुभाग प्रमाण स्पर्धकों का उदय है। देखो फिर से ये दारू, अभी हम शैल और अस्थि को भूल जाते हैं, ये दारू भाग प्रमाण है, उसमें नीचे के तो सम्यक मिथ्यात्व है उसको भी छोड़ देते हैं, ये मिथ्यात्व के दारू भाग दारू रूप स्पर्धक है, उसमें से ये अनंत बहुभाग है वो तो धर्म के अरुचि वाले, अब ये एक में भी अनंत है उसका भी अनंत वा भाग लेना, नीचे का छोड़ देना, नीचे का तो माइल्ड है, एक जो है उसका तीव्र की ओर का लेना, इसमें भी अनंत स्पर्धक है, तो कहते उस एक में जो अनंत स्पर्धक है उसका उदय है जीव को जिस, उसकी बात अभी बता रहे, यहां तक ख्याल में आई बात, अब उसके बारे में क्या बताते हम देखेंगे। ताका महात्म्य करी, यानी उसके निमित्त से सम्यक धर्म तो अप्रिय लागे, और मिथ्या धर्म प्रिय लागे, पहला तो मिथ्या नहीं सम्यक नहीं धर्म की कथनी उसको अप्रिय लगती है, ख्याल में है दोनों का डिफरेंस, पहले वाला कैसा था विषय कषाय में अत्यंत रुचि वाला था, धर्म के बारे में कुछ कथनी ही उसको अरुचि लगती थी, परलोक की बात ही नहीं करता था उसको मानता ही नहीं था, अब ये कैसा है सम्यक धर्म अप्रिय लगता है परंतु मिथ्या धर्म रुचता है उसको, अन्य मतियों की बातें उसको सच्ची लगती है। ताकरी मिथ्या धर्म को सेवे, यथार्थ धर्म को न सेवे। पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है समझ में आई ना बात? पहले वाले को तो बिल्कुल धर्म की बात ही अच्छी नहीं लगती ना, मिथ्या धर्म की ना सम्यक धर्म की। हाँ ये गृहित मिथ्या तो भाव के कारण मिथ्यात्व के स्पर्धक है। पहले तो सारे अगृहित मिथ्यात्व और क्या क्या था, वो तो उपदेश के योग्य नहीं थे। अब ये कैसे गृहित मिथ्यात्व, इनके स्थानक भी असंख्यात लोक प्रमाण, इनके स्थान यानी उनके वेरिएशंस कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग है। तीन विषय यानी उनमें से कई ऊपरले स्थानक तो ऐसे हमने देखा था ना, ये जो हमने कुछ भाग देखे थे इसके ऊपर के ओर के, जिस एक भाग की बात करते हैं उसके ऊपर के कुछ स्पर्धक ऐसे हैं कि तिनके उदय होते तो सत्य धर्म सो द्वेष लागे और मिथ्या धर्म सो आसक्त हो सेवे। सत्य धर्म के प्रति द्वेष बुद्धि होती है और मिथ्या धर्म अच्छा लगता है और उसका सेवन करता है। सो ये भी उपदेश योग्य नाही। इन जीवनी को मिथ्या तो भाव छूटवो उपाय साध्य नाही है। उनका मिथ्या तो भाव छूटना मुश्किल है कहते, उपाय साध्य नहीं। पहले शैल वाले को तो कैंसिल किया, अस्थि वाले को किया, दारू में से बहुभाग तो उसी के साथ गया था, अब जो एक भाग का ऊपर का भाग उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तिनते नीचे केतेक स्थान ऐसे है कि तिनके यानी हम अभी माइल्ड यानी अनुभाग थोड़ा कम हुआ है वहां की बात करें, तिनके उदय सहित मिथ्यात्व धर्म विषय मग्न रहे, सत्य धर्म सो द्वेष न करे। पहला कैसा था, सत्य धर्म का द्वेषी था और मिथ्यात्व भाव का उसको रुचि थी। ये कैसा है, मिथ्यात्व धर्म में मग्न है परंतु सत्य धर्म के प्रति उसके कोई द्वेष नहीं है। बहुरी 300 निचले केतिक स्थान कैसे है, तिनके उदय तई गृहित मिथ्यात्व धर्म मंद भाव सो सेवे, आसक्त हो कहीं न सेवे। पहला मिथ्यात्व धर्म में मग्न था परंतु सत्य धर्म प्रति द्वेष नहीं था, अब यहाँ गृहित मिथ्यात्व है परंतु मंद भाव सहित वो चल रहा है, उसका आसक्ति नहीं उसमें, उस मिथ्या धर्म में आसक्ति रूप से नहीं प्रवर्त रहा। बहुरी 300 निचले कई स्थान कैसे, स्थान कहने उसके स्थान कैसे स्पर्धक, मैंने अभी हीन अनुभाग वाले की बात चल रही है, तिनके उदय ते जीव मिथ्यात्व धर्म को छांडी तो न सके, यानी मिथ्यात्व धर्म को तो नहीं छोड़ सकता है परंतु यथार्थ धर्म को सरावे अनुमोदना करे। आपके यहाँ कोई एक भाई आते थे ना कि यहाँ सुनते थे, सिंधी थे, सुनते थे तो कहते थे ये बहुत सत्य बात है, परम सत्य बात है, 100% है, परंतु मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ सकता, मेरी माँ है बूढ़ी है, उसके लिए मुझे वो कुछ हनुमान स्तोत्र ये चालीसा पाठ कुछ करना पड़ता है, उनकी पूजा करना करनी पड़ती है, पूजा करता हूँ तो मुझे बार बार ख्याल आता है कि ये पूरा ही मिथ्यात्व है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये ऐसा है ना कि मिथ्यात्व धर्म को छोड़ नहीं सकता परंतु यथार्थ धर्म को सरावे अनुमोदना करे। इत्यादि जीव असंख्याते गृहित मिथ्यात्व के जाने, वो भी असंख्यात है और वो भी कैसे गृहित मिथ्यात्व है, कर रहे हैं वो मिथ्या धर्म परंतु उसको सत्य धर्म की सराहना चल रही है उसके मन में। सो ऐसे मिथ्यात्व के उदय सहित जीव है ते उपदेश आदि के उपाय योग्य है, कि जिनके सत्य धर्म के प्रति सराहना चल रही है परंतु वो मिथ्यात्व धर्म भी छोड़ नहीं रहे या छोड़ नहीं सकते है, उनको उपदेश कार्यकारी है। कितने रूल आउट के ऊपर से लेके कितने तीव्र मिथ्यात्व वाले है, इन जीवनी को उपदेश आदि वा बाह्य कारण मिले तो ये बाह्य कारण में हमने देखा जन्म बिंब दर्शन या अन्य जो कुछ बातें होती है, तो बाह्य कारण मिले तो कोई जीव मिथ्या तो धर्म को छोड़ी यथार्थ तो धर्म को अंगीकार करे भी। हमने देखे कितने ऐसे अन्य मति है कि अपना मूल जो छोड़कर जन्म जिस कुल में हुआ है उसको छोड़कर सत्य धर्म सुनता है समझता है उसके प्रति उसको यही सच है लगता है तो पुराना वो छोड़कर इसमें लग जाता है। क्यों मिलेगा? तो यथार्थ धर्म को अंगीकार करे भी।
डॉक्टर
हाँ उनके यहाँ से वो पटवर्धन है ना, कोई डॉक्टर पटवर्धन है, उन्होंने भी उनका अपना उनके पिताजी तो वैदिक के बहुत बड़े विद्वान है,
प्रखर
विद्वान है। उन्होंने ये जैन तत्व परिचय पढ़ी और भी उसके बाद उनको इतनी रुचि बढ़ गई और भी अन्य पुस्तकें मंगा कर वो भी पढ़ी, मंदिर में भी जाके घंटे घंटे वहाँ सामायिक वगैरह करते हैं और पूरा ही अपना जैनिज्म फॉलो करते हैं, दिगंबर जैन धर्म। दूसरे भी उनके यहाँ एक कोई क्रिश्चियन है, अभी मुझे याद नहीं उसका नाम, वो यहाँ आए थे खुद तो जैन तत्व परिचय लेके गए थे। तो क्या बोला उन्होंने, दिस इज 1000 times बेटर देन अवर बाइबल, ये उनके शब्द थे। तो जो उस अभी उसको छोड़ा के नहीं छोड़ा मालूम नहीं उन्होंने तो, परंतु उनको ये बात सही है ये तो प्रतीत होता है। यानी उपदेश ऐसे जीवों को कार्यकारी है। और हम ये द्रव्यानियों की अपेक्षा देखेंगे तो जिसकी ऐसी होनहार आई है तो उसको ऐसा निमित्त भी सहज मिलता है कहीं से, यानी वो उपदेश सुनने के लिए भी नहीं जाते, कहीं ऐसे किसी के साथ बात छटती है और सत्य धर्म का उपदेश भी उसको मिल जाता है। गौरी अवशेष रहे संगी पंचेन्द्रिय जीव, तिनके असंख्यात वे भाग प्रमाण संगी पंचेन्द्रिय जीव, तिनके दारो भाग का अनंतवा भाग प्रमाण निचला स्पर्धक को उदय है। ते कोई जीव तो सत्य धर्म का उपदेश सुने है, सत्य धर्म को पूछे है, अयथार्थ धर्म को छोड़ दे है, यथार्थ व्यवहार धर्म को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करे है, बुद्धिपूर्वक सोच समझ कर द्रव्यादि एक देश अनुव्रत रूप धर्म के अनेक भेदनी को ग्रहण करे है। और कई जीव धर्म बुद्धिपूर्वक यथावत महाव्रत को धारे है। ये कौन से है? वो जो उसे मिनिमम यानी जिसको अत्यंत जिसको कहेंगे मंद अनुभाग चल रहा है फिर भी गुणस्थान मिथ्यात्व का है, अनुव्रत महाव्रत भी कोई धारण करते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं, वही सत्य धर्म है उसको अंगीकार करते हैं, और व्यवहार धर्म की बात है यानी आचरण संबंधी बात है। बहुरी केई बहुत ही मंद मिथ्यात्व के उदय रूप उससे भी मंद मिथ्यात्व निचले स्थानों को उदय होते सम्यक्त को सन्मुख हो है। ये सम्यक्त के क्योंकि जो हम कहेंगे ना प्राग लब्धि में आया अभी करण लब्धि में उसका क्या है मिथ्यात्व अत्यंत मंद है, फिर भी मिथ्यात्व का उदय अंतिम समय तक है, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक है, वहां तक जाते जाते कितना मिथ्यात्व मंद हो गया उसका। तो सम्यक्त को सन्मुख हो है यानी क्या होता है पंच लब्धि रूप भाव को प्राप्त हो है, तीन करण रूप भाव करी यानी तीन करण रूप भावों द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत पर्यंत, ये तीसरा करण का नाम है अनिवृत्तिकरण। तीन करण के नाम बताएंगे नितिन भाई?
हाँ
पहला रही गया अधकरण कहो अधप्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के अंत पर्यंत गुणश्रेणी निर्जरा आदिक अनेक आवश्यक कर्तो संतो यानी करता हुआ ये वहां जो जो कुछ आवश्यक होते हैं वहां स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात वगैरह जो कुछ आवश्यक होते हैं गुणश्रेणी निर्जरा। तो कहते दर्शन मोहनों को उपशमाय कहिए उदय को अभाव करी, यहाँ क्या होता है वहां पर दर्शन मुनि की उपशमना होती है। अभी तक क्या होता था मिथ्यात्व का उदय चल रहा था और मिथ्यात्व का उदय कैसा हो रहा था अभी, ये करण लब्धि में मंद मंद अत्यंत मंद, जिसको कि ना अनुभाग करने के लिए अनंत विभाग अनंत विभाग प्रमाण, उसका मंदता चल रही, इतना मंद हो रहा। अब क्या होगा बाद में, उसका उपशम होगा यानी उदय मिट जाएगा कुछ काल, उसको कहेंगे उपशम हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, वहां उदय चल रहा था, उदय चल रहा था यानी जीव का मिथ्या तो भाव चल रहा था। उदय पहले तीव्र अनुभाग वाला जो मंद होते 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 इतना मंद हो गया है, अब क्या होगा उदय ही रुक जाएगा अंतर्मूर्त के लिए, उस समय जीव के भी मिथ्या तो नहीं रहेगा वहां, तो क्या हो जाएगा सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो दर्शन मुनि को उपशमाएं कहिए, उदय को अभाव करी यानी उदय का अभाव करके अनिवृत्तिकरण का अनंतरवर्ती समय यानी अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय है, उसके नेक्स्ट समय में क्या होगा सम्यक्त्व की प्राप्ति, तो उसको क्या कहेंगे उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। और देखो ये मिथ्यात्व का मंद होना उसका उपशम होना ये किस कारण हुआ, तत्व विचार से हुआ, बस इतने से हुआ। हमें लगता है खाली विचार करने से क्या होगा, लगता है कि नहीं लगता, कुछ करेंगे तो मिलेगा, क्या करना चाहते हैं है ना, ऐसा लगता है कि नहीं, व्रत करेंगे तो कुछ ज्यादा अपने जल्दी मिल जाएगा धर्म, परंतु इसके बिना अगर व्रतों का निषेध नहीं है, तत्व विचार के बिना केवल व्रतादि अंगीकार करने से उस जीव को कुछ हासिल नहीं होगा, हाँ थोड़ा शुभ भाव होगा, तो मिथ्यात्व अगर बाकी रहेगा तो उस शुभ भाव से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा एक हाथ संयोग कुछ काल के लिए होगा, वो भी जो पुण्य बनता है तो एक साथ तो उदय में नहीं आता है, तो पड़ा रहता है, और पड़ा रहता है तो पुण्य रूप से उदय में आवेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ऐसे परिणाम खोटे हो जाते हैं कि वो पुण्य भी पाप रूप टर्न हो जाता है। तो लौकिक में तो बहुत स्यान है, कौन सा धंधा करना है, कितना नफा नुकसान होता है, हर साल में तो हिसाब रखता है कि नहीं, एक क्या दो दो हिसाब रखता है, एक अपने लिए एक गवर्नमेंट के लिए, क्यों। देखो यहाँ क्या कहते हैं, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, ये सर्व मिथ्यात्व के निचले स्थानकनी के उदय सहित जीव सत्य धर्म को आप ही तय व कुलाम नायते व उपदेश थकी भी। देखो देखो अभी ये कौन, ये कैसा कैसा सत्य धर्म कैसे मिला उनको, इसकी अभी यहाँ बहुत सारी लिस्ट बता रहे, क्या कहते हैं, ये सर्व मिथ्यात्व के नीचे के स्थानों का उदय मंद उदय किस कारण हुआ, तो ये बाह्य कारणों की बाह्य निमित्तों की चर्चा है, क्योंकि हमें मालूम है प्रत्येक कार्य तो उपादान की योग्यता से तो होता ही होता है, अब यहाँ चर्चा किसकी है निमित्तों की, तो बाह्य निमित्त ऐसा क्या मिला उसको कि उसका इतना मंद उदय चल रहा है, तो कहते हैं कि सत्य धर्म को प्राप्त किया, तो सत्य धर्म को उसने कैसे जाना, तो कहते आप ही तय, जिसको हम निसर्गज कहेंगे, हो सकता है पूर्व भू की देशना भी यहाँ काम कर रहे, तो आप ही तय वहां गुलाम नाय तय भी, अभी भी लगाए ने किसी को इससे होगा, किसी गुलाम नाय ने उसके कुल परंपरा से उसको ये मिला है, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, हमें ये प्राप्त हुआ सच्चा धर्म, वहां उपदेश थकी भी, भले उस कुल में हो या न भी हो, जैन कुल में हो तो भी किसी अन्य का उसको उपदेश मिला इस संबंध में, तो उसके द्वारा उसको सत्य धर्म मिला, वहां धर्म के बड़े प्रभावनादि अंग तिनको देखते भी, ऐसे मालूम है आपको मिले भाई कोई बड़े प्रभावनादि अंग, पंच कल्याणक होते हैं ना, तो वो बड़े बड़े ऐसे विधान देखकर भी वो सोचता है जीव ये क्या है कैसा है, तो वो प्रभावनादि अंग बड़े विधान होते हैं, प्रवचन होते हैं वहां पर, वहां कोई विभववान पुरुष जे राजादिक तिनको धर्म विषय तत्पर देखे, यानी जो बड़े बड़े महान पुरुष इस धर्म में लगे हैं तो उनको देखकर इसे भी प्रेरणा मिल जाती है, वहां ता करी अनुव्रत व महाव्रत के धारक पुरुष तिनके दर्शन थकी भी अनुव्रती और महाव्रती पुरुषों के दर्शन से भी ये बाह्य निमित्तों की बात है ना, उसको कौन सा सम्यक्त्व कहा है? सम्यक्त्व के जो 10 भेद है उसमें महाव्रतियों को देखकर उनका जो आचरण है उनके जो कुछ व्यवहार धर्म को देखकर भी इसके होता है वो निमित्त रूप से बताया। मार्ग सम्यक्त्व तो कहते उनके दर्शन थकी भी वह और अनेक प्रकार या अन्य अनेक प्रकार के बाह्य कारणी को निमित्त पाए अंगीकार करे है। सत्य धर्म को क्यों अंगीकार किया? तो ऐसे ऐसे अन्य निमित्त। देखो सत्य धर्म को अंगीकार करने की बात है, अभी वो प्रकट करने की बात दूर है। कल में आएगा यहाँ क्या लिखा था देखो, बीच में बड़े विभववान पुरुष राजादिक उनको धर्म विषय तत्पर देखिए। जब कांजी स्वामी ने सानकवासी संप्रदाय छोड़कर दिगंबर ये सत्य धर्म है उसको अंगीकार किया तो ये बड़े महंत पुरुषों को देखकर उनके पीछे कितने अनुयायी चले कि ये जो कर रहे वो तो परम सत्य होना चाहिए, तो इन्होंने भी सत्य धर्म का अंगीकार किया। बाद में उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उस प्रति लगे रहे, वो बात अलग, तो उनके साथ इतने सारे चले आए। तो ये जो मंद उदय वालों के तो सत्य धर्म कैसे अपनाया उसकी बात है, और जिनके तीव्रतर, अब ये सबसे मंद उदय वालों की बात की, अब उससे जरा तीव्र उदय वाले, जिनके तीव्रतर और तीव्र मिथ्यात्व का उदय है तिनको उपदेश देना योग्य नाही। ये पहले भी बताया था उन्होंने जाते ही, यानी क्योंकि मिथ्यात्व के तीव्र उदय में यथार्थ उपदेश को ग्रहण नाही, उल्टा उपदेश देनहारे के धर्म को विघ्न का कारण होए है। हम देखते जैनी होकर भी कोई तीव्र मिथ्या दृष्टि हो गए तो उपदेश सुनने की बात क्या है, जो स्वाध्याय कर रहे उनको भी कोई विघ्न लाएंगे, और हम उनको समझाना चाहते हैं जोर जबरदस्ती तो कोई सुनने वाला तो है नहीं है। यो मिथ्या तो भाव जीव को सर्वथा अकल्याण का कारण है। किसी अपेक्षा तो थोड़ा कल्याण होगा ना उसको, तो कहते सर्वथा अकल्याण का कारण है। ताते जाके मंद उदय को अवसर में या को छोड़ना योग्य है, यानी जिसके मिथ्यात्व का मंद उदय चल रहा है तो उसे उसको सर्वथा यानी निकाल बाहर कर देना योग्य है। और या का तीव्रतर व तीव्र उदय में छोड़ना असाध्य है, जब तीव्र उदय चल रहा है, जैसे हम देखते हैं कि नदी के प्रवाह में कोई पड़ा है और बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए तो उसमें से तैरना सीखकर बाहर आ सकता है कि नहीं है, परंतु जहां प्रवाह नेचुरली थोड़ा मंद हो जाता है तो वहां वो तैर के बाहर भी आ सकता है। तो ऐसे ही तीव्रतर तीव्र उदय में छोड़ना असाध्य है, ये मिथ्यात्व चतुर्गति संसार का कारण है और मोक्ष के अभाव का कारण है। मोक्ष उसका नहीं हो सकता जब तक ये मिथ्या तो पड़ा है ऐसा। ताते ये महापाप रूप ही है, छोटा पाप नहीं, ये पाप लगता है क्या किसी को? क्यों भाई ये पाप लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि किसी ने बहुत सारे खून किए, बहुत हिंसा करता है, वो तो पाप लगता है, परंतु मिथ्या तो नाम का कोई पाप है उससे भी महाभयंकर, ऐसा कभी लगा ही नहीं इसको। है ये है यानी छोड़ने लायक है। अब मिथ्या तो भाव, अभी हमने ये बात देखी थी कि जो 20 प्ररूप ना है ना जीव की, आप बताएंगे कौन से 20 नाम बताने? गुणस्थान, जीव समस
हाँ जीव समस पर्याप्ति
हाँ बहुत अच्छा
गति इंद्रिय काय वेद प्रसाय
ज्ञान
ज्ञान
संयम
ज्ञान संयम दर्शन देशा बंध समित संगी आहार
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 और बहुत अच्छा ये जो 20 प्ररूपना है अब इनमें ये मिथ्यात्व भाव को लगाना है तो मिथ्यात्व भाव कौन से गुणस्थान में होगा पहले गुणस्थान में तो मिथ्यात्व भाव कौन कौन से जीव समासों में पाया जाएगा सभी देखो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे ये मिथ्यात्व भाव गुणस्थान तो प्रथम विषय ही है यानी प्रथम जो गुणस्थान उसका नाम ही मिथ्यात्व गुणस्थान है या मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है उसी में होता है और मार्गणा स्थानक नहीं विषय डायरेक्ट उन्होंने मार्गणाओं में लिया है परंतु हम लगाए ना जीव समास में सभी जीव समासों में हो सकता है और सम्यक तो होगा तो संगी पंचेन्द्रियों में होगा पर्याप्त में होगा प्राप्त होगा तो पर्याप्ति अभी उसमें तो जो सभी हो गए ना एक इंद्रियों में एक इंद्रियों में चार पर्याप्ति होगी द्विंद्रिय आदि में पांच होगी छह हाँ चार चार पांच पांच छह पर्याप्त पर्याप्त अब कितने प्राण वालों को मिथ्यात्व होगा अभी 10 से लेकर सब ले लेगा उसके 10 7 9 7 वगैरह पर्याप्त पर्याप्त उनके भेद है ना हाँ एक इंद्रियों के चार हो गए नहीं नहीं वो तो सहयोगी के है उसमें तो नहीं लेना है उसको गुणस्थान पहला ही लेना है अपने तो अभी 14 मार्गणाओं में देखेंगे हाँ संज्ञा उसके मिथ्यात्व में चारों संज्ञा तो गति चार यानी चारों ही गतियों में मिथ्यात्व भाव पाया जाता है इंद्रिय ने पांचों इंद्रिय वाले एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जाति पांच ये जाति क्यों अलग निकाला उन्होंने जाति नहीं है एक ही बात है ना जाति नहीं है उन्होंने काय छह ये छह काय के नाम मालूम है आशा हाँ बोलो बोलो छह काय के नाम बताने वो मालूम है आपको मुझे पता है छह द्रव्य नहीं पूछे षटकाय जिसको कहेंगे छकाय जीव हाँ बोलो बोलो एक इंद्रिय के मालूम है पांच हाँ कौन कौन से है हाँ जलकाय और पृथ्वी काय है ना वो पांच और त्रस काय ये क्या हुए षटकाय योग आहारक द्विक विना क्योंकि आहारक और आहारक मिश्र का योग छठे गुणस्थान में होता है बाकी मनोयोग चार वचन योग चार बाकी सब औदारिक औदारिक मिश्र सब में मिथ्या तो पाया जा सकता है तीनों वेद वालों के होगा कषाय सभी 25 है ज्ञान कुज्ञान 3 संयम में असंयम दर्शन में चक्षु चक्षु दर्शन क्योंकि अवधि दर्शन तो सब में दृष्टियों के होता है क्या
निद्रा वाली बात नहीं
नहीं नहीं दर्शन दर्शन में लगाना ये कर्मों की बात नहीं है दर्शन की पर्यायों को लेना है चार ही पर्याय होती है उसमें से चक्षु चक्षु दर्शन लेना लेशा सभी छह क्योंकि मिथ्या तो गुणस्थान में सभी छह लेशा पाई जाएगी भव्य में भी और मिथ्या तो पाया जाएगा अभव्य में भी क्योंकि कितने भव्य मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक्त्व यानी सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा ये मिथ्यात्व है संगी संगी भी और असंगी में भी मिथ्या तो भाव पाया जाएगा आहारक में अनाहारक आहारक दोनों में पाया जाएगा इन स्थानक विषय मिथ्यात्व भाव प्रवर्त है इस तरह से उन्होंने 14 मार्गणाओं में इसको गठित किया उपयोग में कौन से उपयोग में उपयोग के भेद कितने पहले ये बताओ ज्ञान के कितने उपयोग है और दर्शन के कितने हैं हाँ बोलो बोलो, ज्ञान के उपयोग कितने हैं?
ज्ञान के आठ
है, ज्ञान के आठ है, दर्शन के चार है, तो उसमें मिथ्या तो भाव कितने में होगा? दो दर्शन जो इसमें आ गए थे पहले, तीन को ज्ञान और दो दर्शन उपयोग में उसी को ले लेना है। फिर इति श्री भावदीपिका ग्रंथ के औदयिक भाव भावाधिकार विषय द्वितीय मिथ्यात्व भाव अंतराधिकार पूर्ण किया। ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है, जैसे छह बातें बताई थी समय के लिए मोक्ष के कारण, तो याद है क्या कौन से?
गुरु धर्म,
हाँ
तो
बहुत अच्छा,
आगम और पदार्थ,
बहुत अच्छा। कौन कौन से देखे? देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ, और उसी के आधार से उन्होंने ये सारे मिथ्यात्व भाव वगैरह भी समझाए थे कैसे कैसे होते हैं। अब आगे का जो अंतर भाव अधिकार है, यानी औदयिक भाव का और एक भेद, हमने अभी तक कौन कौन से देखे औदयिक भाव? गति औदयिक भाव, मिथ्यात्व औदयिक भाव। अभी कषाय भाव अंतराधिकार चलेगा, औदयिक भावों के अंतर्गत कषाय भाव अधिकार चलेगा। अभी यहाँ दोहा देखेंगे, जिन कषाय विधि जगतयो ताहि जयो जिन राय, तिन पद नमि गहि शरण जिना, हरो कषाय दुखदाय। जिन कषाय विधि जगतयो, यानी जिन कषायों के कारण यह जगत है, नहीं संसार है। कषायों के कारण क्या हो रहा है? संसार है। ताही जयो जिन राज, जिनेन्द्र भगवान ने उस पर जय प्राप्त किया है। तीन पद नमी, उनके पद को, जिनेन्द्र भगवान के पद को नमस्कार करता हूँ। गही शरण जिना, और जिनेन्द्र भगवान का शरण ग्रहण करता हूँ। हरो कषाय दुखदाय, हे जिनेन्द्र भगवान मेरे कषाय जो दुखकारी है कषाय, उनका हरण करे, ऐसी भावना बांधे। अब ये जो अधिकार है वो हम कल प्रारंभ करेंगे, अभी तो मंगलाचरण हुआ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो लो।